एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथ सार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। आज के ग्रंथ सार में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे समकालीन उपन्यास की दुनिया में उतर रहे हैं जिसने अपने अनोखेपन और दिल छू लेने वाले हास्य से दुनिया भर के पाठकों का मन मोह लिया है। ग्रीम सिम्सियन का द रोजी प्रोजेक्ट।
जी हाँ, द रोजी प्रोजेक्ट वाकई एक बहुत ही दिलचस्प किताब।
और इसके लेखक ग्रीम सिम्सियन ऑस्ट्रेलिया के हैं। उनका बैकग्राउंड आईटी कंसल्टेंट और डेटा मॉडलर का रहा है, क्यों?
बिल्कुल, और ये चीज उनके लेखन में, खासकर जो मुख्य पात्र है डॉन टिलमन, उसके चरित्र में साफ झलकती है।
हाँ, ये उपन्यास 2013 में आया, उनका पहला ही उपन्यास था और आते ही अंतर्राष्ट्रीय बेस्ट सेलर बन गया।
40 से ज्यादा भाषाओं में अनुवाद हुआ, फिल्म भी बनी इस पर।
है तो ये रोमांटिक कॉमेडी की शैली में, पर जैसा आपने कहा, इसमें न्यूरोडाइवर्सिटी मतलब तंत्रिका विविधता और स्वीकृति जैसे गंभीर विषय भी हैं,
बहुत
संवेदनशीलता से उठाए गए हैं
और हास्य के साथ, ये इसकी खूबी है।
तो आज हम इसी पर बात करेंगे। कहानी क्या है, डॉन और रोजी की यात्रा कैसी है, और ये प्यार, अनुकूलता, स्वीकृति जैसे विषय कैसे सामने आते हैं।
हाँ, और देखेंगे कि कैसे एक इतना तार्किक, लॉजिकल दिमाग वाला प्रोफेसर प्यार की थोड़ी अतार्किक सी दुनिया में उलझ जाता है।
चलिए शुरू करते हैं मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया से हमारे नायक डॉन टिलमन।
जी, डॉन टिलमन 39 साल के जेनेटिक्स प्रोफेसर
जी,
बहुत प्रतिभाशाली हैं, आर्थिक रूप से भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन
लेकिन
सामाजिक रूप से थोड़े कह सकते हैं अजीब हैं। मतलब लोगों से घुलना मिलना उनके लिए आसान नहीं है।
हाँ, सुना है उनका जीवन बहुत ज्यादा व्यवस्थित है, एकदम घड़ी की सुई की तरह।
बिल्कुल, हर चीज का एक तय शेड्यूल, यहाँ तक कि उनका खाना भी स्टैंडर्डाइज्ड मील सिस्टम फॉलो करते हैं वो, ताकि समय बचे, ऊर्जा बचे।
ओ, और सामाजिक संकेत समझने में दिक्कत?
बहुत ज्यादा, जैसे कोई मजाक कर रहा है या कोई कटाक्ष कर रहा है या कोई क्या महसूस कर रहा है, ये सब समझना उनके लिए मुश्किल है। मानवीय बातचीत उन्हें एक पहेली जैसी लगती है, थका देने वाली पहेली।
तो जाहिर है अकेले होंगे।
हाँ, और डॉन अपने अकेलेपन को भी ना एक प्रॉब्लम की तरह देखते हैं।
प्रॉब्लम मतलब समस्या?
हाँ, जैसे कोई गणित की समस्या हो जिसे डेटा और तर्क से हल किया जा सकता है।
अच्छा, तो हल क्या निकाला उन्होंने?
उन्होंने शुरू किया द वाइफ प्रोजेक्ट।
द वाइफ प्रोजेक्ट, ये क्या है?
ये एक 16 पन्नों की प्रश्नावली है, बहुत डिटेल्ड, वैज्ञानिक तरीके से डिजाइन की हुई।
प्रश्नावली पत्नी ढूंढने के लिए?
हाँ, ताकि वो तार्किक रूप से मतलब लॉजिकली सबसे उपयुक्त, सबसे कंपैटिबल जीवन साथी ढूंढ सकें।
और क्या थीं शर्तें?
अरे बहुत कुछ, जैसे धूम्रपान ना करती हो, हमेशा समय पर आए, तर्क संगत हो, बीएमआई ठीक हो, लिस्ट लंबी है।
कमाल है, मतलब प्यार को भी एक वैज्ञानिक प्रयोग बना दिया। पर क्या जिंदगी और खासकर प्यार किसी प्रश्नावली में फिट हो सकता है?
यही तो सवाल है। डॉन के लिए दुनिया एक ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है, हर चीज को बेहतर बनाना है, एफिशिएंट बनाना है।
लेकिन रिश्ते, वो शायद ऑप्टिमाइजेशन से ज्यादा सिंक्रोनाइजेशन पर चलते हैं, आपसी तालमेल पर।
बिल्कुल सही कहा आपने, और डॉन की इसी व्यवस्थित लॉजिकल दुनिया में एक तूफान की तरह एंट्री होती है रोजी जार्मन की।
रोजी जार्मन, यहीं से कहानी में असली मोड़ आता है ना?
हाँ, डॉन का एक दोस्त है जीन, वो भी प्रोफेसर है साइकोलॉजी का, वो एक तरह से मजाक में ही रोजी को डॉन से मिलवा देता है।
और रोजी तो डॉन की प्रश्नावली के हिसाब से बिल्कुल फिट नहीं बैठती होगी।
बिल्कुल नहीं, मतलब जरा भी नहीं। रोजी बारटेंडर है, हालांकि साइकोलॉजी में पीएचडी कर रही है, ये अलग बात है, कर दिया। लेकिन यहाँ एक और पेच है।
वो क्या?
रोजी का अपना भी एक प्रोजेक्ट चल रहा है।
अच्छा, उसका क्या प्रोजेक्ट है?
द फादर प्रोजेक्ट।
द फादर प्रोजेक्ट मतलब?
उसकी माँ की मृत्यु हो चुकी है और रोजी अपने जैविक पिता की तलाश में है। उसे लगता है कि उसकी माँ के मेडिकल स्कूल के साथियों में से कोई एक उसका पिता हो सकता है।
तो ये एक जेनेटिक पहेली है।
एग्जैक्टली, डीएनए के जरिए पिता की पहचान करना, और ये चीज ये डॉन के वैज्ञानिक दिमाग को अपील कर जाती है।
हाँ, ये तो उसकी फील्ड की बात हो गई।
बिल्कुल, तो वो रोजी की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। अपना वो जो महत्वाकांक्षी वाइफ प्रोजेक्ट था उसे फिलहाल साइड में रख देता है।
वाह।
और यहीं से शुरू होती है डॉन और रोजी की वो अजीब सी पर बहुत प्यारी सी साझेदारी।
ये तो बड़ी मजेदार विडंबना है, पत्नी ढूंढने का लॉजिकल प्रोजेक्ट पीछे छूट गया और पिता ढूंढने की ये भावनात्मक उलझी हुई खोज शुरू हो गई।
हाँ, और ये साझेदारी ही इस उपन्यास का दिल है। ये सवाल उठाती है कि असली कंपैटिबिलिटी क्या है, क्या वो चेकलिस्ट मिलाने से आती है,
या फिर दो बिल्कुल अलग तरह के इंसानों के बीच जो शायद कभी एक दूसरे को नहीं चुनते, उनके बीच अचानक पनपने वाले कनेक्शन से।
सही, और उनकी ये यात्रा बहुत ही हास्यास्पद और कई बार दिल को छू लेने वाले पलों से भरी है।
जैसे कुछ उदाहरण देंगे?
हाँ, जैसे वो फादर प्रोजेक्ट के लिए डीएनए सैंपल इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं संभावित पिताओं के, और इसके लिए उन्हें कई अजीबो गरीब चीजें करनी पड़ती हैं।
अच्छा।
एक बार वो एक मेडिकल स्कूल रियूनियन में जाते हैं सैंपल लेने। अब वहां डॉन अपनी वो जो सटीक नापतौल वाली स्किल है उसका इस्तेमाल करके अचानक कॉकटेल बनाने लगता है।
क्या बात कर रहे हैं, डॉन कॉकटेल बनाते हुए।
हाँ, और वो इतना अच्छा बनाता है कि देखते ही देखते पार्टी का सबसे पॉपुलर बारटेंडर बन जाता है। ये उसके लिए बिल्कुल नया अनुभव था, सामाजिक सफलता का पहला स्वाद शायद।
ये तो डॉन के लिए बहुत बड़ा बदलाव होगा। वो इंसान जो लोगों से बचता फिरता है, वो पार्टी की जान बन गया।
हाँ, और वो इस चीज को मतलब रोमांचक भी पाता है, भले ही पूरी तरह समझ ना पाए कि क्यों।
और कोई घटना?
एक और है, वो रोजी को इम्प्रेस करने के लिए लॉबस्टर बनाने की कोशिश करता है, पर उसे खुद ही भयानक एलर्जी हो जाती है।
बेचारा डॉन।
हाँ, पर इस घटना से उसकी एक कमजोरी, उसकी वल्नरेबिलिटी सामने आती है, और साथ ही रोजी का जो केयरिंग साइड है वो भी दिखता है।
और वो जैकेट वाली बात?
हाँ, वो भी बहुत प्यारा पल है। डॉन रोजी को एक नई जैकेट में देखता है और उसे एक बहुत तेज मतलब फिजिकल और इमोशनल रिएक्शन महसूस होता है
जिसे वो समझ नहीं पाता।
हाँ, वो उसे अपने लॉजिकल दिमाग से क्लासिफाई नहीं कर पाता कि ये क्या है, लेकिन हम पाठक समझ जाते हैं कि यह आकर्षण है जो उसकी बनाई किसी भी प्रश्नावली से बिल्कुल बाहर है।
तो धीरे धीरे डॉन के नियम टूट रहे हैं, उसका टाइम टेबल बिखर रहा है।
बिल्कुल, वो रोजी के लिए अपनी योजनाएं बदल रहा है। ये डॉन जैसे इंसान के लिए क्रांतिकारी बदलाव है।
और वो उसे खुश रखने की कोशिश कर रहा है बिना किसी लॉजिक के।
हाँ, एक गहरी जरूरत महसूस कर रहा है। ये डॉन के कैरेक्टर का बहुत सुंदर विकास है। वो सिर्फ रूल्स फॉलो करने वाले प्रोफेसर से एक ऐसा इंसान बन रहा है जो भावनाओं को, अनुभवों को जगह दे रहा है, भले ही अनजाने में।
और रोजी, उसकी यात्रा कैसी है इस दौरान?
रोजी की यात्रा भी उतनी ही जरूरी है। शुरू में तो वो डॉन की इन अजीब बातों पर शायद थोड़ी हैरान होती है, थोड़ी अम्यूज्ड भी रहती होगी।
हाँ, जाहिर है।
पर धीरे धीरे वो डॉन की ईमानदारी, उसकी लॉयल्टी और उसकी जो अनोखी सी दयालुता है ना, बिना किसी जजमेंट वाली, उसे पहचानने लगती है।
अच्छा।
डॉन उसे एक तरह की स्थिरता देता है, स्वीकृति देता है, जो शायद उससे पहले कभी नहीं मिली।
और उसका वो फादर प्रोजेक्ट, वो सिर्फ पिता की तलाश है या अपनी पहचान की भी?
मेरे ख्याल से दोनों है। कहीं ना कहीं वो अपनी जड़ों को, अपनी पहचान को समझने की कोशिश कर रही है, और डॉन के साथ उसका रिश्ता उसे ये समझने में मदद करता है कि पहचान शायद अतीत से ज्यादा वर्तमान के रिश्तों से बनती है और भविष्य के चुनावों से।
इसमें उनके दोस्त जीन और क्लॉडिया, उनकी क्या भूमिका है?
हाँ, वो भी अहम है। जीन जो साइकोलॉजी प्रोफेसर है, रिश्तों को लेकर थोड़ा पारंपरिक है और उसके अपने सीक्रेट्स हैं। वो सामाजिक रूप से तो बहुत कुशल है, पर निजी जीवन में शायद उतना ईमानदार नहीं।
और क्लॉडिया, जीन की पत्नी?
क्लॉडिया क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है। वो डॉन के लिए एक तरह से समझ और बुद्धिमानी की आवाज है। वो अक्सर डॉन के व्यवहार का मतलब समझाती है, डॉन को भी और हमें भी।
अच्छा।
और जीन और क्लॉडिया का जो अपना कॉम्प्लिकेटेड रिश्ता है, वो डॉन और रोजी के उभरते हुए अजीब लेकिन ताजगी भरे ईमानदार रिश्ते के एकदम कॉन्ट्रास्ट में खड़ा है।
ये दिखाता है कि बाहर से परफेक्ट दिखना ही सब कुछ नहीं होता।
बिल्कुल, सामाजिक रूप से उपयुक्त होना खुशी की गारंटी नहीं है।
कहानी का क्लाइमैक्स न्यूयॉर्क में आता है, जहां ये लोग फादर प्रोजेक्ट के सिलसिले में जाते हैं। वहां क्या होता है?
हाँ, न्यूयॉर्क की यात्रा कहानी का एक बहुत बड़ा मोड़ है। डॉन को कोलंबिया यूनिवर्सिटी में लेक्चर देना होता है। लेकिन उसकी तैयारी की हुई प्रेजेंटेशन खो जाती है। अब उसे बिना तैयारी के बोलना है।
तो उसने क्या किया?
उसने अपने जीवन को ही एक केस स्टडी बना लिया। उसने इस बारे में बात की कि एक ऐसे दिमाग के साथ जीना कैसा होता है जो सामाजिक जानकारी को अलग तरह से प्रोसेस करता है, उसकी चुनौतियां, उसका अनोखापन।
और लेक्चर कैसा रहा?
जबरदस्त सफल रहा। ये डॉन के लिए खुद को स्वीकार करने का, मतलब सेल्फ एक्सेप्टेंस का एक बहुत गहरा पल था।
ये तो उसके लिए बहुत बड़ी जीत हुई, खुद को सबके सामने स्वीकारना।
बिल्कुल। लेकिन उसी रात डॉन और रोजी के बीच एक बहुत इमोशनल पल आता है, पर जीन से जुड़ी गलतफहमी हो जाती है।
क्या होता है?
डॉन अपनी भावनाओं के जाल में और अपने पुराने तर्क के पैटर्न में फंस जाता है। वो ये निष्कर्ष निकालता है कि वो अपने इस तार्किक भावना शून्य स्वभाव के कारण सच्चे प्यार के काबिल नहीं है और वो रोजी के लिए सही नहीं है।
नहीं,
हाँ, वो सोचता है कि वो रोजी को दुखी देगा, तो वो तर्क का इस्तेमाल करके रोजी को खुद से दूर कर देता है।
ये तो दिल तोड़ने वाली बात है, अपनी ही लॉजिक के जाल में फंस गया बेचारा।
हाँ, फिर वो मेलबर्न लौट आता है, अपनी पुरानी व्यवस्थित जिंदगी में वापस जाने की कोशिश करता है।
पर अब वो पहले जैसी नहीं लगती होगी।
बिल्कुल नहीं, अब वो दुनिया उसे खाली लगती है, बेमानी लगती है। वो पुरानी एफिशिएंसी, वो शेड्यूल अब उसे कोई खुशी नहीं देते।
तो फिर उसे अपनी गलती का एहसास कैसे होता है?
क्लॉडिया से बात करने के बाद क्लॉडिया उसे समझाती है और तब उसे एहसास होता है कि उसका पूरा वाइफ प्रोजेक्ट उसकी बुनियादी गलत थी।
कैसे?
वो कंपैटिबिलिटी नहीं ढूंढ रहा था, वो असल में खुशी ढूंढ रहा था, और वो खुशी उसे मिली थी पूरी तरह से अनुपयुक्त रोजी के साथ। उसे समझ आता है कि प्यार कोई लॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है जिसे सॉल्व किया जाए, प्यार तो एक एहसास है जो पूरे समीकरण को ही बदल देता है, वो तर्क को अप्रासंगिक बना देता है।
तो क्या वो अपने तर्क को पीछे रखकर दिल की सुनता है?
हाँ, अपने पुराने डॉन वाले अंदाज के बिल्कुल उलट वो अपने सारे शेड्यूल्स फाड़ देता है, एक इम्पल्सिव फैसला लेता है।
क्या?
न्यूयॉर्क वापस जाने की फ्लाइट पकड़ लेता है।
सच में?
हाँ, वो रोजी को ढूंढता है और फिर अपने उसी अनोखे डॉन वाले अंदाज में, मतलब बात तो लॉजिकल स्ट्रक्चर में करता है पर बहुत गहरे इमोशनल तरीके से अपने प्यार का इजहार करता है।
कैसे? क्या कहता है?
वो घोषणा करता है कि रोजी अब उसकी जीवन योजना का एक स्थायी नॉन नेगोशिएबल हिस्सा है।
वाह।
और रोजी, जो इस बीच अपने एहसासों को समझ चुकी है और डॉन की ईमानदारी को सबसे ज्यादा महत्व देती है, वो उसे पूरी तरह स्वीकार कर लेती है।
तो हैप्पी एंडिंग?
हाँ, उपन्यास का अंत होता है उनके एक साथ, एक अप्रत्याशित बिना किसी प्लान वाले भविष्य का सामना करने की तैयारी के साथ, एक खूबसूरत और संतोषजनक अंत।
वाकई ये उपन्यास सिर्फ एक प्रेम कहानी से कहीं ज्यादा है, इसमें इतने सारे गहरे विषय बुने हुए हैं।
हाँ, प्यार बनाम पर का जो द्वंद्व है वो तो है ही, ये दिखाता है कि इंसानी जुड़ाव अक्सर कमियों में, थोड़ी अराजकता में और सहजता में पनपता है, किसी चेकलिस्ट से नहीं।
बिल्कुल। और दूसरा अहम विषय है न्यूरोडाइवर्सिटी और स्वीकृति। डॉन के चरित्र को, जिसमें शायद ऑटिज्म स्पेक्ट्रम के लक्षण दिखते हैं, उसे कभी भी किसी कमी की तरह नहीं दिखाया गया।
सही कहा, वो दुनिया को देखने और समझने का बस एक अलग तरीका है। उपन्यास डॉन की ईमानदारी, उसकी वफादारी, उसके अनोखे नजरिए का जश्न मनाता है।
यह हमें सिखाता है कि हमें ना सिर्फ दूसरों की भिन्नताओं को बल्कि खुद की जो विचित्रताएं हैं उन्हें भी स्वीकार करना चाहिए।
बिल्कुल। और पहचान और अपनेपन का सवाल भी है। रोजी पिता को ढूंढ रही है, डॉन साथी को, पर अंत में दोनों पाते हैं कि सच्ची पहचान शायद बाहरी चीजों से नहीं बल्कि उन रिश्तों से मिलती है जो हम खुद चुनते हैं
और अपना भविष्य बनाते हैं।
हाँ, और एक और बात, बदलाव का महत्व, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का। डॉन का विकास तभी होता है जब वो अपनी उस कठोर दुनिया को रोजी के लिए बाधित होने देता है।
ये दिखाता है कि ग्रोथ अक्सर अनजाने रास्तों पर चलने से ही होती है।
सही। और जिस तरह से कहानी कही गई है, फर्स्ट पर्सन में, डॉन के नजरिए से, वो भी इसे बहुत खास बनाता है ना, बहुत ज्यादा। हम सीधे डॉन के दिमाग के अंदर चले जाते हैं, दुनिया को उसकी नजरों से देखते हैं, उसकी उलझनें, उसकी सीधी सपाट व्याख्याएं।
इससे जबरदस्त हास्य पैदा होता है, पर वो सहानुभूति वाला हास्य है। हम डॉन पर नहीं हंसते, उसके साथ हंसते हैं।
बिल्कुल। और वो सिचुएशनल आयरनी, परफेक्ट साथी की तलाश उसे सबसे इम्परफेक्ट इंसान तक ले जाती है, ये तो कमाल है।
और डॉन के वो शेड्यूल, उसके नियम, वो उसके नियंत्रण की जरूरत के प्रतीक बन जाते हैं।
हाँ, और जैसे जैसे वो टूटते हैं, वो उसके भावनात्मक विकास का प्रतीक बनता है।
ये हास्य कहानी को हल्का फुल्का रखता है, पर डॉन के चरित्र को कभी कमजोर नहीं दिखाता।
सही कहा, पाठक पर इसका असर बहुत पॉजिटिव होता है, खुशी, गर्मजोशी, एक उम्मीद सी मिलती है, हम डॉन के लिए खुश होते हैं।
इसका स्थायी संदेश शायद सहानुभूति और स्वीकृति का है, चीजों को सतह से परे देखना, भिन्नताओं को अपनाना।
हाँ, और ये पारंपरिक रोमांस की धारणाओं को भी चुनौती देता है, बताता है कि प्यार अक्सर बहुत अप्रत्याशित, बहुत अतार्किक जगहों पर मिल जाता है।
अंततः यह कहानी हमें याद दिलाती है कि जीवन की सबसे खूबसूरत चीजें शायद हमारी योजनाओं और तर्क की सीमाओं के ठीक बाहर इंतजार कर रही होती हैं।
और सच्ची अनुकूलता शायद भिन्नताओं को मिटाने में नहीं बल्कि उन्हें समझने, स्वीकारने और यहाँ तक कि सराहने में निहित है।
यह संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।